पिछली बार इस श्लोक के जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वित्त अर्थात धन, अकिंचन वित्त, अकिंचन किंचित मतलब कुछ थोड़ा सा, अकिंचन मतलब थोड़ा सा भी नहीं, नो एनीथिंग अकिंचन। और ऐसे व्यक्ति का धन क्या हो सकता है, निर्धन का धन, सादी सिंपल लैंग्वेज में कई भक्त कवियों ने ऐसे रचना की है, निर्बल के बल निर्धन के धन। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अ लिविंग बीइंग इज फिनिश्ड एज सून एज देयर इज नथिंग टू पजेस। व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से समाप्त समझ जाता है कि मेरा अब कुछ नहीं बचा। देयरफॉर अ लिविंग बीइंग कैनॉट बी इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म अ रिनाउंसर। अ लिविंग बीइंग रिनाउंसेस समथिंग फॉर गेनिंग समथिंग मोर वैल्यूएबल। पिछली बार हमने इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी कि आखिर त्याग का मतलब क्या है। केवल वैष्णव सिद्धांत एकमात्र सिद्धांत ऐसा है जो आपको ये सबक सिखाता है कि परमानेंटली यू आर नॉट ए रिनाउंसर, परमानेंटली यू आर नॉट ए एंजॉयर। इस दुनिया में हम परमानेंटली कुछ चीज नहीं कर सकते स्थायी रूप से। क्यों? क्योंकि ये दुनिया ही परमानेंट नहीं है। ये दुनिया, ये सारा भौतिक जगत एक दिन नष्ट होने वाला है। अब हम सब जानते हैं कि ये एक दिन सब नष्ट होने वाला है, तो फिर जो आसक्ति है वो क्यों नहीं जाती? कहीं तो बैठकर सेटल होने की इच्छा होती है, किसी अच्छे गांव में, किसी नौकरी में, किसी जॉब में, किसी प्रोफेशन में। अभी मैं आ रहा था, सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो एक कोई पोस्टर लगा रहे थे नया, 100% जॉब गारंटी और योर मनी बैक। तो सहज मेरे मन में विचार आ गया कि आजकल ये जॉब का माहौल इतना खराब है तो ये कैसे कोई गारंटी दे सकता है कि 100% गारंटी जॉब की या आपका मनी बैक। तो मैंने किससे पूछा था तो उन्होंने कहा कि वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे मामूली छोटा मोटा कुछ ऐसा जॉब रखते हैं जो कोई पसंद नहीं करेगा, और ऑन पेपर आप उनको उनमें दोष नहीं निकाल सकते। वो तो कहेंगे आपने फीस भरी, कोर्स किया और ये जॉब है, चाहे तो ले लो। तो इस तरह से देर आर नो गारंटीज, जगत में किसी की गारंटी नहीं है। और मानवीय स्वभाव ऐसा है, क्योंकि मानव को बहुत अधिक बुद्धि है, अधिक चेतना है, अगर संकट कैलामिटी अगर बहुत पास में है और हम कुछ नहीं कर सकते तो आप, कई लोग यहां पर डॉक्टर हैं, आपने कभी मानस शास्त्र साइकोलॉजी में पढ़ा भी होगा कि व्यक्ति या तो बहुत चिंतित होता है या तो पूरा बेफिक्र हो जाता है। अरे क्या डरना, अभी इतना पास में आया, अभी क्या डरना। जैसे कभी कभी स्कूल में स्टूडेंट्स कहते हैं अभी इतनी एग्जाम पास में आई है, अभी पढ़ाई करने से कुछ फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर बता रहे थे कि कैसे पीला लाइट जो है, येलो लाइट, वो किसके लिए दिया है कि अभी आप थोड़ा स्पीड कम करो, कुछ ही क्षणों में लाल होने वाला है। और आप देख सकते हैं लोगों को, कई लोग अगर पीला हो गया ना तो थोड़ा और तेजी से जाते हैं, कि चलो भागो अभी तुरंत लाल होने वाला है। लेकिन वो पीला बनाया क्यों गया है? ताकि आप स्लो डाउन करो। लेकिन एक बार गए बच गए, दूसरी बार गए बच गए, तीसरी बार गए फिर भी बच गए, तो आदमी सोचता है कि होप्स हैं, इस सिस्टम को बीट करने के होप्स हैं। और फिर एक बार पकड़े जाते हैं, फिर आप पुलिस से बहस करते हो कि नहीं नहीं वो पीला थोड़ा पीला था, तब तक मैं उधर से जा चुका था। बोलता है कि नहीं पूरा लाल हो गया था। और अंत में वो कहता है कि सुनो, मैं जो कहता हूं वो अथॉरिटी है, यहां पर मैंने देखा लाल था और आपने सिग्नल तोड़ा है। कई बार आप सुन नहीं पाओगे वो लोग क्या बात कर रहे हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। पीला था जब मैं गया तभी। संसार में भी अनेक बहुत सारे ऐसे पीले सिग्नल्स होते हैं, येलो लाइट्स। बुढ़ापा एक पीला सिग्नल है। हर एक चीज की क्वालिटी, आहार की चीज हो या कोई भी चीज हो, एंटरटेनमेंट हो, कोई संगीत हो, हर चीज में उसका अपना एक बुढ़ापा आता है, उसकी क्वालिटी कम कम हो जाती है। कोई एंटरटेनमेंट की नॉवेल मैगजीन है, बार बार पढ़ लिया फिर आप कहते हैं कि अभी ऊब गए। कोई टीवी सीरियल है, बोले बार बार वही वही दिखा रहे हैं। होता क्या है, ये एक प्रकार का यार्डस्टिक, मेजरिंग टेप, इस संसार की चीजों को लगाते 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 हम फिर जब आध्यात्मिक चीजों में आते हैं, खास करके श्रीमद् भागवत जैसे, तब हम सोचते हैं कि ये भी तो वही वही है ना, रोज वही जप करने का। अगर इसमें स्पिरिचुअल लाइफ में और अधिक उत्साह से हिस्सा लो, कोई अपनी सत्संग की मीटिंग है, काउंसलिंग मीटिंग हो, या और कोई भक्त से मिले, मुझे कहें जाप किया, एकादशी आ रही है, उपवास किया, तो हमारा भौतिक लॉजिक मन ये कहता है कि बार 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 वही क्यों करना, कुछ अलग नहीं हो सकता इसमें। तो इसलिए एक तो हम महान भक्तों के आदर्श से समझ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने प्रह्लाद की कथा और ध्रुव की कथा 100 बार नॉन स्टॉप श्रवण की। गदाधर पंडित सुनाते थे और महाप्रभु कहते थे फिर एक बार सुनाओ, एक बार हो गया फिर एक बार सुनाओ। अब ध्रुव महाराज की कथा में है, उसमें एडवेंचर है, उसमें मिस्ट्री है, लेकिन महाप्रभु तो राधा भाव द्युति सुविलतम, राधा भाव का आस्वादन करने के लिए आए थे, उनको ध्रुव महाराज की कथा में क्या मिल रहा है। ध्रुव और प्रह्लाद की कथा से हमें सहिष्णुता, टॉलरेंस, एक बार किसी आध्यात्मिक प्रिंसिपल का अनुष्ठान किया, वंस वी हैव रिसीव्ड समथिंग तो उससे डटे रहना, डिटर्मिनेशन, ये भी हम उससे सीख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में षट गोस्वामियों के बारे में बताते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एंड रघुनाथ दास गोस्वामी गेव अप देयर वर्ल्डली पॉम्प एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द सेक ऑफ सर्विस ऑफ द लॉर्ड। दे वर बिग मैन इन द वर्ल्डली सेंस, मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट सर्विस ऑफ बंगाल। एंड रघुनाथ दास गोस्वामी वॉज द सन ऑफ अ बिग जमींदार, बट दे लेफ्ट एवरीथिंग टू गेन समथिंग सुपीरियर टू वॉट दे प्रीवियसली पजेस्ड। तो हम किसी भी चीज के त्यागी नहीं है, यहां बन सकते हैं। त्यागी बनने के लिए कुछ ओनरशिप होना चाहिए, हमारे पास ओनरशिप है नहीं तो हम त्याग क्या करेंगे। बुद्धिमान लोग इसलिए इस भौतिक जगत को इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये आज है कल नहीं है, जब तक है तब तक उसका उपयोग कर सकते हैं। किसकी सेवा में उपयोग करना, अगर अपनी सेवा में करेंगे तो तुरंत आसक्ति बढ़ जाती है। भगवान की सेवा में उसका विनियोग करने से यही टेम्पररी जगत, हमारा टेम्पररी शरीर, हमारी टेम्पररी सेवा धीरे 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 परमानेंट बन जाती है। आज मैं थोड़ा सा जो यहां पर आत्मा रामाय ये शब्द है इसके ऊपर थोड़ा अधिक गौर से विचार करना चाहूंगा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयड, नौकरी देने वाला और नौकरी करने वाला, दोनों के मन में यही भाव होता है कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता है। अगर नौकर को पता चला कि मेरे साहब को मेरी इतनी आवश्यकता है कि मैं अगर छोड़ के जाऊंगा तो उनका कुछ काम नहीं बनेगा, तो वो अपना सैलरी बढ़ाने की बात करेगा। अगर एम्प्लॉयर को मालूम है कि इसके जैसे मुझे 50 लोग मिल सकते हैं तो वो उसको अलग प्रकार से ट्रीटमेंट देगा। तो सबसे पहले मन में प्रश्न ही आता है, एक कृष्ण भगवान और कृष्ण भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, क्यों? आप सोचेंगे कि ये भगवान मेरी सेवा की राह देख रहे हैं अब तक सृष्टि के आदि से, कि मैं कुछ चढ़ाऊंगा, मेरे से 10 रुपए 20 रुपए। Why Krishna want service from me? जब तक ये मिस्ट्री मन में सॉल्व नहीं होती तब तक वो डिटर्मिनेशन मन में नहीं आएगा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रुक्मिणी देवी का जो बहुत सुंदर उपाख्यान है, कैसे रुक्मिणी देवी ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह की योजना मन में बनाई, तो उसके आरंभ में परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, भगवान अपि गोविंद, बलराम जी के विवाह की बात आती है तो सुखदेव गोस्वामी एक ही श्लोक में भगवान बलराम जी का विवाह का वर्णन समाप्त करते हैं कि रेवत नाम के राजा थे, रेवती नाम की परम सुंदरी उनकी कन्या थी। और आपने कभी ये शब्द सुना है विधि लिखित का अर्थ है विधि अर्थात ब्रह्मा, जो ब्रह्मा जी ने ललाट पर लिखा है वही होगा। खास करके विवाह के बारे में लोगों के मन में ऐसा है कि हर एक पार्टनर के ललाट पर उसके पार्टनर का नाम लिखा होता है और उसी के साथ उसका विवाह होगा, चाहे आप कुछ भी करो। रेवत राजा बड़े सम्राट थे ना, उन्होंने सोचा ये पंचांग देखकर पंडित जी से पूछकर कि भैया कौन है हमारे पुत्री के लिए अच्छा वर, अरे मैं सीधे ब्रह्मा जी से जाके पूछूंगा कि कौन है इसके लिए वर अच्छा। हो सकता है कोई कोई लोग ऐसे शक्तिशाली हैं, तो राजा सीधे ब्रह्मलोक गए पुत्री को लेकर। गए वहां पर तो पता चला कि कीर्तन चल रहा है, ऊपर के लोगों में खास करके संगीत ये तो बहुत ही अधिक प्यूरिफाइड, अधिक उच्च कोटि का होता है। ब्रह्मलोक में तो सदैव हरिनाम संगीत, हरिनाम कीर्तन चल रहा होता है। तो वहां के नौकर चाकर ने कहा कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, इसके बाद ब्रह्मा जी आएंगे बाहर। तो आधा पौना घंटा हुआ होगा, अब ब्रह्मा जी आ गए, उन्होंने पहचान लिया रेवत राजा को। राजा ने कहा पुत्री है और विवाह इच्छुक है वो, तो 3-4 उन्होंने राजकुमार के बारे में बताया होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे 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 अभी तो कितना समय बीत गया पता है आपको? बोले हाँ हम यहां पे आधे घंटे से हैं खड़े। बोले लाखों साल बीत गए आपके पृथ्वी लोक के। बोले मतलब? अरे जो राजा थे उनकी हजारों पीढ़ियां काल के गाल में चली गई। तो बोले अब? बोले समय बीता नहीं है, अब जाओगे तो साक्षात भगवत अवतार अनंत शेष वहां पर बलराम के रूप में है, उन्हीं से अपनी कन्या का विवाह कर दो। तो वो आ गए। तो ऐसे एक श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बड़े भाई हैं इसलिए उनका विवाह पहला होना चाहिए, तो उनकी कथा भी पहले बोल देते हैं एक ही श्लोक में। और फिर कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने तो हजारों विवाह किए, वास्तविक बलराम जी का तो एक हाथ दूसरा है और भगवान कृष्ण के तो हजारों हैं, और एक एक विवाह ऐसा है जिसमें इतनी मारकाट हुई कि कुछ पूछो मत, बहुत लोग मारे गए, खास करके क्षत्रिय। तो सुखदेव गोस्वामी को सबसे पहला प्रश्न यह है कि ये भगवान ने इतने विवाह क्यों किए, मामूली व्यक्ति विवाह क्यों करता है। एक तो वैदिक साइकोलॉजी है और आजकल के लोग भी अपने ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं, मैन फील्स डेफिशिएंट, पुरुष अपने आप में कोई कमी महसूस करता है, सो ही वांट्स सम वुमन, ए वुमन फील्स डेफिशिएंट शी वांट्स अ मैन। प्रकृति का नियम है, इसमें कोई अपमानजनक बात तो है नहीं। किसी को कोई कभी अपने पत्नी से कहता भी है कि ये पत्नी लाने से क्या लाभ, कोई सेवा तो नहीं करती मेरी, तो मुझे मतलब क्या, मैं आपकी सेविका के रूप में हूं कि जस्ट बिकॉज टू सर्व यू आई शुड मैरी यू, तो कहेगा नहीं कोई हस्बैंड, या कहेगा भी लेकिन बात तो एक ही है। और एक वुमन भी, एक स्त्री भी, के इनके साथ रह गए तो कुछ अच्छा कपड़ा, अच्छा वस्त्र, अच्छा निवास, सब कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा, नहीं तो कभी कभी वो कह भी देती है कि क्या दिया आपने मुझे इतने सालों में, कुछ कुछ गहना नहीं दिया, कुछ ये नहीं दिया, कुछ वो नहीं दिया। तो अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमन ये सेवा होती। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न बड़ा सूचक है कि कृष्ण भगवान को भी यही सब चाहिए होता है, तो सुखदेव को समझते कि नहीं, वो आत्माराम है, ही इज फुल इन हिमसेल्फ। तो जो अपने आप में फुल पूर्ण, आप्त काम, आप्त संतुष्ट, अनेक शब्दों में भागवत में बार 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 बताया है। शायद आपको आश्चर्य होगा कि भगवान ने 16,000 स्त्रियों को कैसे स्वीकार किया, ऐसे ही बोलते बोलते। उसके पीछे कल्चरल बैकग्राउंड क्या है वो देखिए जरा। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में समझाते हैं, जरासंध ने हजारों राजाओं की कन्याओं को वो राजा के साथ बंदी बनाया, और राजा को बंदी बनाया चाहे जरासंध ने खुद ने उनकी कन्या को हाथ से पकड़कर नहीं लिया होगा, लेकिन जब पिताजी चले गए और कन्या भी पीछे पीछे चली गई तो शी वॉज कंसिडर्ड इम्प्योर, कि अभी ये अपने पिता के घर से बिना विवाह किए कोई शत्रु उसको पकड़ के लेके गया है, अब उसको कौन स्वीकार करेगा। तो कृष्ण भगवान ने ये दिखाया कि एक साथ एक दो तीन चार नहीं, 16,100 कन्या ने भगवान से प्रार्थना की, अब हमको कौन समाज में स्वीकार करेगा, दिस सोसाइटी हैज रिजेक्टेड अस, अब हमारा कोई स्टेटस नहीं है। तो भगवान ने कहा फिर मैं क्या कर सकता हूं, बोले आप ही हमको स्वीकार कीजिए, ऑल राइट, एक शब्द में बोल दिया ऑल राइट, ठीक है। अब आप सोचिए आज कोई व्यक्ति अगर ऑल राइट बोल सकता है, लेकिन क्या वो ऑल राइट कर सकता है। प्रभुपाद जी थोड़े जोक के मुंह में बताते हैं कि कोई नवाब थे जिसके 200 बेगमें थी उसकी, या किसी की 300 थी, ये जो मुगल लोग आ गए इंडिया में वो कन्वर्ट करते गए, कभी किसी ने 200 शादियां की, लेकिन फिर भी वो 200 बेगमों के साथ एक साथ नहीं रह सके, उनको तो कई के बार पता भी नहीं था कि इनके साथ मेरी शादी भी हुई है। तो मनुष्य ऐसा है, अगर वो नकल करेगा भगवान की तो इट्स ए होपलेस पथेटिक परफॉर्मेंस। लेकिन भगवान ने 16,100 कन्याओं से कहा कि ठीक है आप आज ही मेरी आप पत्नी के रूप में मैं आपको स्वीकारता हूं। और ऐसे भी नहीं हुआ कि भगवान एक जगह पर खड़े हैं और 16,000 कन्या एक साथ आ रही है लाइन से और एक एक हार डालते जा रही है। भागवत में स्पष्ट वर्णन है 16,100 प्रिंसेसेस वेर मैरिड इन 16,100 लोकेशंस, 16,100 लोकेशन पर उनका विवाह चल रहा था। हरेक को लग रहा था कि अरे द्वारकाधीश तो मेरे सामने है, तो फिर बाकी कन्या हुआ क्या हाल होगा। फिर सबको अलग अलग 16,100 महल दिए गए, उसमें 16,100 रूप लेकर भगवान रहे थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपको ऐसे अचरज होगा कि ये अचरज ये रूप कैसे लिए, बोले आज आपके सामने भगवान परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में उपस्थित है। मनुष्य लोक संख्या कितनी है? 6.5 बिलियन के आसपास, और बाकी जीव कीटाणु तो उससे सैकड़ों गुना ज्यादा है। तो हमारे सामने भगवान इतने रूप लेकर सामने खड़े हैं, तो क्या वेन यू वॉन्ट 16,000 रूप नहीं ले सकते? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आप तक आमी है, दूसरों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गौरांग महाप्रभु एक बार, हमेशा उनके भक्त उनके लिए कुछ ना कुछ प्रसाद लाते थे, भोग, वो तो भगवान है वो तो भोग चढ़ाते थे। तो गोविंद कहते थे कि हाँ लाइए 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 लाइए, और फिर लोग कहते थे कि वो जो बड़ी बनाई थी वो भगवान ने खाई, फिर वो जो लड्डू बनाए थे भगवान ने खाए। तो वो कहते थे कि मैं तो उनके सामने रखा तो हूँ, नहीं नहीं हम पूछ रहे हैं भगवान को वो अच्छा लगा क्या। तो एक दिन गोविंद ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के सामने आके कहा कि एक प्रॉब्लम है, आपको इतना सब लोग देते हैं। वो बोला अच्छा मुझे तो पता ही नहीं। बोला नहीं, ये सामने वाले 2 कमरे भर चुके हैं पूरा नैवेद्य से। तो बोले फिर समस्या क्या है? बोले आप तो खाते ही नहीं, आपको कुछ ऑफर करूंगा आप कहते हैं हम सन्यासी हैं हमको ये सब रिच पैलेटेबल नहीं देना चाहिए। तो बोले समस्या क्या है फिर? बोले मुझे भक्तों का मन तोड़ना पड़ता है, मैं झूठ बोलता हूं कि उन्होंने लिया थोड़ा सा लिया ऐसे लिया वैसे लिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत जान लिया कि ये केवल सर्विस में बाधा आ रही है इसकी। तो उन्होंने क्या कहा? वही ऑल राइट लाओ सब। तो 2 कमरे भर के छत से लेके फ्लोर तक जो भी भरा था सामान भगवान ला रहे भगवान के सामने, और महापुरुष सब खाते जा रहे, एक ही सिटिंग में सारा फिनिश कर दिया। बोले सबको बोलना एवरीथिंग वॉज फर्स्ट क्लास, ये है सुप्रीम लॉर्ड, उनके सामने कोई अवरोध नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि रुक्मिणी देवी ने उनके साथ राक्षस विधि से विवाह क्यों किया? अब वेदों में हमारे 8 प्रकार के विवाह की विधियों का वर्णन है। राक्षस विधि मतलब राक्षसों का विधि नहीं, उस विधि का नाम राक्षस विधि रखा गया। दैव विधि होती है जिसमें वर वधु एक दूसरे को देखते तक नहीं, वो माता पिता चाचा मौसी ये सब लोग बात करते हैं और विवाह होता है। गांधर्व विवाह में केवल वर वधु एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि विवाह करेंगे, हाँ विवाह करेंगे, विवाह हो गया। तो श्रीमद् भागवत में दुष्यंत महाराज जब शकुंतला को देखते हैं, शकुंतला होती है ब्राह्मण ऋषि कण्व के आश्रम में, और वो कहते हैं कि क्यों मेरा मन कर रहा है इससे विवाह करने का। तो जरा सोचिए दुष्यंत महाराज के शब्द देखिए क्या है, वो मैं कुरुवंशी हूं, हमारे शुद्ध कुरुवंशीय ब्लड में कभी भी अधर्म की बात नहीं आ सकती, वी विल नेवर डू अधर्म। तो क्यों मेरा मन ऐसा कर रहा है कि ये ब्राह्मण कन्या नहीं है, शी मस्ट बी क्षत्रिय, उसमें कोई क्षत्रिय क्या कुछ होना चाहिए। तो बाद में जब वो पूछताछ करते हैं तब पता चलता है कि है तो वो मेनका और विश्वामित्र की कन्या, लेकिन इस आश्रम में केवल पली है वो। तो दुष्यंत महाराज का इतना कॉन्फिडेंस था कि हमारे हमारे वंश में कभी भी जैसे ब्राह्मण और किसी क्षत्रिय से विवाह करे या ये अधर्म नहीं हो सकता। राक्षस विधि वो होती है जिसमें द गर्ल इज जस्ट किडनैप्ड, जो वर पक्ष है ब्राइड ग्रूम स्वयं या तो उसके अपने सगे संबंधी या चाहे भले पुलिस हो साथ में या कुछ भी हो, लेकिन वो आके सीधा हल्ला हमला बोल करके लेके जाते हैं। तो रुक्मिणी ने स्वयं भगवान से पत्र लिखकर कहा था कि आप ऐसा कीजिए, तो ऐसे समझा जाता है कि वो स्वयं एक क्षत्रिय कन्या थी ना, तो इसलिए पॉलिटिक्स में बहुत एक्सपर्ट थी वो, कब क्या सुझाव देना चाहिए, क्योंकि उसने भगवान को क्या लिखा था, अगर आप सीधे महल में आओगे तो बहुत मारकाट होगी, मेरे अपने सगे संबंधी मर जाएंगे, आप ऐसा कीजिए गांव के बाहर आइए, मैं वहां पे एक मंदिर में जाऊंगी पूजा करने के लिए, मेरी पूजा होने दो, तब तक रुकना, पूजा होने के बाद कुछ समय के लिए मैं अकेली रहूंगी, केवल मेरी दो तीन एकदम कॉन्फिडेंशियल सखियों के साथ, तब आप रथ लेकर वहां पर आना, तब मैं रथ पर चढ़ूंगी और आप मुझे लेके जाना। रुक्मिणी ने कृष्ण भगवान को देखा नहीं था तब तक, शी हैड नेवर सीन हिम, तो कैसे पता चला कि कृष्ण ऐसे हैं, बहुत सुंदर है, क्योंकि बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत भक्त वैष्णव वो भीष्मक राजा के महल में आकर कृष्ण भगवान का गुणगान करते थे। सुखदेव गोस्वामी वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से सूचकता से मुकुंद करके भगवान का नाम का योजन करते हैं, तो आचार्य बताते हैं मुक्ति प्रदाता, मुकुंद अर्थात मुक्ति प्रदाता, हमको जीवन में क्या चाहिए, एसेंशियली क्या चाहिए हमको, सांसारिक क्लेशों से मुक्ति है कि नहीं, वी वॉन्ट रिलीफ फ्रॉम मटीरियल ट्रबल्स, आदि दैविक हो आदि भौतिक हो आध्यात्मिक हो, तो सबसे पहले कभी कभी लोग डाउट पूछते हैं कि भगवान को किसने देखा है, भगवान को किसने देखा है, सबसे पहले लोगों के मन में यह आता है क्या भगवान को किसने देखा है, लेकिन यहां पर कुंती रुक्मिणी देवी के इसमें हम देखते हैं यू डोंट नीड टू सी गॉड, भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं है, अगर सही अथॉरिटी से उनके बारे में श्रवण करेंगे तो अपने आप उनके प्रति आसक्ति या रति या प्रेम बढ़ जाता है। एक बार भी भगवान का दर्शन किए बिना रुक्मिणी देवी वॉज कन्विंस्ड कि मैं भगवान की ही पत्नी बनूंगी, तो उसने क्या किया, एक ब्राह्मण को अपना दूत बनाया और उसको एक रथ पर बिठाकर भेज दिया उसको, नहीं लगता है ब्राह्मण तो चल के ही आ गए, ब्राह्मण चल के आ गए, कई दिनों का प्रवास होगा, वो अमरावती है जो महाराष्ट्र में, वहां पर कौंडिन्यपुर करके जगह है, आज भी वहां पर रुक्मिणी देवी का मंदिर है, वहां से द्वारका, इतनी दूरी वो ब्राह्मण आए, द्वारका पहुंचने पर उन्होंने द्वारपाल से पूछा कि भगवान द्वारकाधीश से मिलना है, ब्राह्मण सामने देखकर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को एक इंस्ट्रक्शन था, कोई ब्राह्मण सामने आएगा तो उसको रोकना नहीं, तुरंत अंदर भेज दिया जाए, तो एकदम अंदर अंतपुर में भागवत में वर्णन है इनर रेसिडेंशियल क्वार्टर्स में उसको भेजा जाता है। द्वारकाधीश भगवान ब्राह्मण को सामने देखकर सबसे पहले कृष्ण भगवान दिखाते हैं कि कितना एटिकेट इंपॉर्टेंट है सोशल डीलिंग्स में, तुरंत अपने सिंहासन से उठकर, राज सिंहासन से उठकर नीचे उतरकर उनका स्वागत करते हैं। ये ब्राह्मण तो अपरिचित है, कृष्ण हैज नेवर सीन हिम बिफोर, तो फिर पूछते हैं कि सब ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या होता है उनका, आपके धर्म आचरण में कोई तकलीफ तो नहीं है ना, दिस इज द ओनली थिंग किंग वुड आस्क ए ब्राह्मण, इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ योर धर्म धर्म ड्यूटीज कोई राजा या कोई मर्चेंट या कोई सर्वेंट, बाकी तीन आश्रम वाले और कोई भी, कोई बाधा डाल रहे हैं क्या, अगर कोई ऑब्स्टेकल पैदा कर रहा है तो क्षत्रिय के नाते मेरा कर्तव्य है कि उनको दंड देना, फिर उनको बिठाकर अच्छी तरह से भोजन फिर आराम, ये सब करने के बाद भगवान कृष्ण पूछते हैं जिस कार्य के लिए आप यहां पर आए हैं, अब आप निश्चिंत होकर वो कार्य के बारे में मुझे बताएं, मैं क्या करूं आपके लिए, तो वो यहां वहां देखकर उसको बताया होता है कि क्या है, तो वो लेटर सामने रखता कि ये हमारी रानी रुक्मिणी देवी हमारी राजकन्या ने आपके लिए दिया है। उसको मालूम है अंदर क्या है वो, लेकिन फिर भी वो सोचता कि आप पढ़िए। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं आप ही पढ़िए। हालांकि सब मालूम है उनको, कृष्णा नोज एवरीथिंग, तो भी नरलीला में वो सारा, जैसे एक ब्राह्मण है सोशल एटिकेट वाइज ऊपर है थोड़ा सा क्षत्रिय से, बोला आप ही समझाइए हमें क्या है इसमें। तो 10th कैंटो में रुक्मिणी उवाच नाम के जो 7 श्लोक हैं रुक्मिणी उवाच शुरू होने वाले, दे आर नॉट सेट बाय रुक्मिणी, वो रुक्मिणी ने कहा नहीं है, वो ब्राह्मण ही कह रहा है, लेकिन रुक्मिणी ने जो संदेश दिया है वो पढ़ के सुना रहा है। और आचार्य सिद्धार्थ स्वामी वगैरह टीका करते हैं कि दी श्लोकाज आर द एग्जैक्ट श्लोकाज कंपोज बाय रुक्मिणी देवी। कभी कभी जैसे चैतन्य चरितामृत में है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ये थोड़ा काव्य है, महाप्रभु मे नॉट हैव सेड द सेम वे। कृष्णदास प्रसाद गोस्वामी कवि है तो मैंने कवि रूप से कुछ उसको ये किया है, लेकिन जैसे भगवत गीता है एग्जैक्ट भगवान कृष्ण के शब्द हैं, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अर्जुन आस्क्ड और एग्जैक्टली वही भगवान ने बताया है। तो रुक्मिणी देवी के पहले ही श्लोक में वो कहती है कि आपके गुणों के बारे में सुनकर मुझे इतना कन्विक्शन आ गया है, इतना मेरा मन स्थिर हो गया है कि आपके अलावा और मैं किसी को वर नहीं मांगूंगा, यह वरमाला मैं आपको ही पहनाने की इच्छा रखती हूं, क्योंकि आप अच्युत हैं। वो कहती है कि मैं जानती हूं कि आपको मेरी आवश्यकता नहीं है, आप आत्माराम हैं, लेकिन मैं क्या करूं, आपके गुणों ने मुझे निर्लज्ज बना दिया है, योर डिवाइन क्वालिटीज हैव मेड मी शेमलेस। अगर आप कहोगे कि ये कैसे आप, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस, अच्छे क्षत्रिय कुल की कन्या है और सीधा लेटर लिख रही है मुझे, भले कुछ भी हो लेकिन जिसका विवाह नहीं हो गया है ऐसी कन्या किसी पर पुरुष को लेटर लिखना तो उस जमाने के हिसाब से तो बहुत ही रिस्की था। तो पूछा जाएगा कि क्यों इतना रिस्क ले रही आप, तो कह रही एक तो बात ऐसी है कि मेरा भाई, उसके 5 भाई थे, उसमें सबसे बड़ा था रुक्मी, रुक्मी ने कैसे जैसे उसकी दोस्ती हो गई कंस से। तो ऐसा है, कई लोग कहते हैं कि हमारी भक्ति में या इसको भक्ति में लाना है उसको भक्ति में लाना है, कभी कभी इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, ओनली वन रीजन, फ्रेंडशिप। उस व्यक्ति की फ्रेंडशिप किसके साथ है, अगर एक भी अभक्त आपके जीवन में ऐसा है जिसकी फ्रेंडशिप आप छोड़ नहीं सकते, यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड, वो एक एंकर जैसा बना रहेगा। एंकर को क्या कहते हैं हिंदी में, नंगर, नांगर कहते मराठी में, नंगर। इतना बड़ा जहाज लेकिन वो एंकर की वजह से नहीं निकल पाता बाहर। तो ऐसे ही अभक्तों के साथ अगर फ्रेंडशिप है तो वो बड़ा एंकर बन जाती है। वो तो कंस तो मारा गया था, तो इसलिए जरासंध, अभी कंस के साथ दोस्ती हो गई तो जरासंध भी तो वो कंपनी में आ ही गए, तो जरासंध लोग सब चर्चा करते थे कि ये कृष्ण बड़ा बदमाश है, अरे अपने मामा का वध किया उसने, छी छी छी, अरे मामा ने इतने भांजों का वध किया उसके बारे में कोई चिंता नहीं उनको। भागवत में वर्णन है कि ये असुर लोग आपस में क्या डिस्कस करते थे कि कृष्णा इज ए किलर ऑफ रिलेटिव्स, ये अपने रिलेटिव को मारता है, बाप रे कितना भयंकर आदमी है ये, और किसको मारा, लेकिन कंस जैसे व्यक्ति को मारा जिसने निग्रहता से अपने भांजों का खून किया, मर्डर किया उनका, ये कोई सोचता नहीं। तो इससे भी दूसरी बात साबित होती है कि भक्त लोग तो भगवान के बारे में चर्चा करते थे ही, लेकिन कृष्ण भगवान ने अवतार लेके सारे कवि नॉवेलिस्ट, उस समय तो नॉवेल नहीं थे लेकिन जो भी लोग चर्चा करने वाले, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ही किडनैप्ड द स्पीच पोटेंसी ऑफ एवरीबडी. हर एक की वाचा शक्ति का भगवान ने अपहरण कर दिया. असुर लोग भी अगर मिले कहीं तो वो कहते कि बहुत सुंदर है लिखने में लेकिन बहुत बदमाश है. बट दे कुड नॉट हेल्प इट. डिस्कशन एक ही टॉपिक के बारे में. कृष्ण आज नहीं, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने किया, क्या समझता है आपने आपको, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, हाउ इज रॉन्ग, हाउ इज अनएथिकल, हाउ ऐसे है वैसे है. लेकिन कृष्ण के अलावा और कोई टॉपिक नहीं था. तो दैट्स व्हाई कृष्ण वाज सो फेमस बिफोर ही कुड बी देयर इन वन प्लेस. उनका सौंदर्य, उनका सब कुछ सब जगह पर प्रतीत हो गया था, एस्टैब्लिश हो गया था. ये नहीं था कि रुक्मिणी का सौंदर्य भी सब जगह पे ऐसे हुआ था. कृष्णा ने, भगवान ने सोचा कि ठीक है, इफ शी वांट्स मी आई एम अवेलेबल. तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि एनी टाइम एनी डिवोटी कम्स बिफोर कृष्णा एंड सेज हमको सेवा चाहिए, ऑल राइट, आयो, क्या कर सकते हैं आप. बोले हमारे पास ज्ञान बुद्धि बल पैसा कुछ है ही नहीं. बोले जाप करो, हमारा प्रसाद खाओ, हमारे कीर्तन में डांस करो, और क्या चाहिए. बोले ये सेवा चलेगी. बोला हाँ बहुत चलेगी. चलेगी क्या, दौड़ेगी क्या, प्रॉब्लम है. कृष्णा नेवर एक्सपेक्ट्स वन एक्स्ट्रा थिंग फ्रॉम यू. जितना दिया है उतना दे दो बस. अरे मेरे पास ये होता था तो मैं और अच्छी सेवा कर रहा था. कोई आवश्यकता नहीं. अगर आवश्यकता होगी तो पहले कृष्ण रिसोर्सेज देंगे, फिर कहेंगे कि लाओ. कभी कभी तभी प्रॉब्लम होता है. व्हेन कृष्णा गिव्स सम नॉलेज सम ऑपुलेंस एंड देन सेज नाउ गिव इट बैक, लाओ मी. हम कहते हैं कि थोड़ा रहने दीजिए ना, क्या तकलीफ है आपको, आपके पास तो इतना सब कुछ है. नो, दैट इज डेमिगॉड वर्शिप. डेमिगॉड वर्शिप में, देवता की पूजा में, हम जो मिलेगा उसके ऊपर आंख रखकर पूजा करते हैं. मतलब भगवान इधर है और वस्तु इधर है तो हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उसी को देख रहे कि अच्छा है कि नहीं, टेस्ट कर रहे हैं सही में मिलेगा कि नहीं ये. नो, कृष्ण वर्शिप, कृष्ण कॉन्शियसनेस में सामान भले मिलेगा नहीं मिलेगा, उनका प्रॉब्लम है अगर खराब सामान देंगे तो, है कि नहीं. अगर भगवान रिटर्न में कुछ खराब चीज देते हैं तो भक्त कहते हैं कि आपका ही नाम खराब होगा, हमारा कुछ नहीं है. तो इसलिए भगवान भी कभी खराब देते ही नहीं. तो जरासंध, उसने रुक्मिणी से कहा था कि आपकी बहन है, विवाह के योग्य है, सबसे क्वालिफाइड नाम सुझाता हूं मैं. बोले कौन. शिशुपाल. बोले शिशुपाल क्या क्वालिफिकेशन है उसका. अरे कृष्ण का नंबर वन एनिमी है वो. बोले हां तो ठीक है. कृष्ण का सबसे पहला नंबर वन का शत्रु है. दिस वॉज द ओनली क्वालिफिकेशन शिशुपाल है. तो भीष्मक ने कहा लेकिन बेटा सोचो कोई और है कि नहीं. तो रुक्मिणी का कहा नहीं, मैं बड़ा भाई हूं, मैं जानता हूं मेरी बहन के लिए सबसे अच्छा क्या है वो. तो सिंपल दादागिरी करके उसने अपना बाकी सबका मुंह बंद कर दिया. बोला बस शिशुपाल सही होगा. लोग भी, लोग बाहर के लोग मुंह पे कहते थे कि क्या चॉइस किया है हमारे राजा के बेटे ने, ते बेवकूफ है. तो वो भी समझता था कि ये बात फैल गई है और कुछ तो होने वाला है. हर एक के मन में ये तो कुछ होने वाला है, क्या पता नहीं कुछ तो होने वाला है. तो शुभदेव गोस्वामी कहते हैं समग्र बल वाहना. जो राजे शादी के लिए आए थे, विवाह के लिए, समग्र बल आर्मी लेके आए थे, वाहना सारे अपने रथ और घोड़े हाथी ऊंट सब लेके आए थे. अब राजा अगर शादी में जाएगा तो 5-50 सैनिक लेगा, अपने आमने सामने जा रहे हैं, परेड कर रहे हैं, ये सारी आर्मी लेने की आवश्यकता क्या है. सबको मन में था ये कृष्ण जरूर कुछ करेगा बीच में. अब ऐसा था, एवरीबडी वॉज कन्विंस्ड कृष्णा विल कम एंड रुक्मिणी वॉज नॉट कन्विंस्ड. उनके मन में संदेह था कि शायद आएंगे नहीं आएंगे. तो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गए, वो ब्राह्मण अभी तक नहीं आए. कल टाइम है आने का, शादी का, विवाह का समय तो कल है. वो तो पूरा समय रोती रही रोती रही रोती रही, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। फिर उसके मन में विचार आ गया कि शायद मैंने ये देवताओं की ठीक से उपासना नहीं की होगी। मैंने शंकर भगवान की उपासना तो की है लेकिन वो तो रुद्र हैं, रुलाने वाले, शायद उनकी पत्नी की ठीक से उपासना नहीं की, वो तो रुद्राणी है, वो भी रुलाती है। शैलजा, वो तो पत्थर की है, वो तो गिरिजा पर्वत की पुत्री है, वो क्या उसका क्या मेल्ट होगा हृदय। देन रुक्मिणी देवी गोज ऑन टू से, फिर आगे उसका मन जाता है, आई विल डाई 100 deaths, मैं चाहे तो सैकड़ों बार मृत्यु को पसंद करूंगी लेकिन कृष्ण के अलावा और किसी को मैं स्वीकार नहीं करूंगी। तो हालांकि ये कृष्ण की नित्य प्रिया है, शी इज इटर्नल कंसोर्ट, वो कभी अलग नहीं हो सकते, सन और सनशाइन कभी अलग नहीं हो सकता। तो वैसे ही राम सीता राधा कृष्ण रुक्मिणी कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते, लेकिन कभी कभी साधक भक्तों के लिए भी, साधना भक्ति करने के लिए वाले को भी इससे प्रेरणा मिलती है कि द इटर्नल कंसोर्ट थिंग्स लाइक दिस, कि मुझे अगर भगवान नहीं मिलेंगे, चाहे भले नहीं मिले इस जीवन में, फिर वो सोचिए कि व्हाई शुड ही एक्सेप्ट मी, व्हाई शुड ही एक्सेप्ट मी, मेरे में से क्या गुण है, वो तो सारे दिव्य गुणों से भरपूर है, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मैं थोड़ा सा पैसा देके उनको अट्रैक्ट कर सकती हूं, क्या मेरा कुल बड़ा है, उच्च कुल है, है क्षत्रिय कुल में है वो। तो इस प्रकार से इवन द इटर्नल कॉन्सॉर्ट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ बीइंग डिसक्वालिफाइड, कि मैं कृष्ण भगवान के, मेरी पूजा कृष्ण भगवान के लायक नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम हमेशा अगर इस स्थिति में अपने आप को रखें तो ही हमारी प्रगति हो जाती है। और अचानक क्या हो गया, उसकी जंघा, उसके बाहु और उसके नेत्र भड़कने लगे। स्त्रियों में लेफ्ट बताया गया है, पुरुषों में राइट बताया गया है, कि अगर ये शरीर के अंग हिलते हैं अंदर से, ऐसे हिलाने से नहीं, अंदर से अगर उसमें शडरिंग ट्रेम्बलिंग होता है, एक भी हो गया तो शुभ सूचक है वो, जिसको तो तीनों हो रहे थे। तो सर का नहीं, देर इज होप। और अचानक उसने ब्राह्मण को देखा, अब वो दूर, वो तो ऊपर बरामदे में है, बरांडा में, ब्राह्मण नीचे से आ रहे हैं। तो ब्राह्मण देव ने केवल हंसकर आंखों से बता दिया कि हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो शी वॉज वेरी हैप्पी। फिर उन्होंने पूजा की, सारी व्यवस्था कर दी, फिर वो सखियां, फिर सब मासियां और सब बड़े बड़े एल्डरली विमेन फोक वो सब लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनके घराने का वो रिवाज था कि दुर्गा देवी के मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए, और वहां पर वो सब मंत्र बोलने लगे। अब हो तो रहा है दुर्गा देवी का पाठ, लेकिन रुक्मिणी देवी का दुर्गा देवी के बारे सोच रही हूं। तो कभी कभी भक्त भी सोशल कस्टम से हम कहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मन हमारा कृष्ण में होना चाहिए हमेशा। वो पूजा शिवजा सिंह की, एक बार पूजा होने दो, ये तो पूजा हो गई। फिर बाहर आ गए और सारी लाइन लगी है सारे राजाओं की, सब देख रहे हैं कि अरे आज तक जिसके बारे में सुना था वो रुक्मिणी यहां पर है, और रुक्मिणी वहां पर स्कैन कर रही है कौन कहां पर, भगवान द्वारकाधीश कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और उसने थोड़ा सा अपनी बट को हिलाकर पीछे मुड़ के देखा, जिन किनों ने उनका दर्शन किया वो अपने हाथी घोड़े से नीचे गिर गए। शी वॉज सो ब्यूटिफुल, शी वॉज ओनली 14 years old। अब सौंदर्य होता है इसलिए, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप अस्त्र शस्त्र गिर गए और हाथी घोड़े से गिर गए वो लोग बेहोश होकर। इन ए फ्लैश अचानक वहां से रथ आ गया, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण स्वयं घोड़े को पकड़े हुए हैं, और रुक्मिणी देवी ने तुरंत अपना ग्रुप छोड़ दिया, वो सब पैराथमिता, वो तो क्या फायदा उसका भी पूजा का फूल मिल सकता, वो सब छोड़ दिया बाहर, और तेज गति से वो भागे उधर। भगवान ने उसको एक हाथ को उठा दिया ऊपर, और एक सेकंड में हो गया वो अचानक रुक्मिणी है, रुक्मिणी नहीं है, ये क्या हो गया? तो सारे राजा लोग होश में आ गए, अरे पकड़ो 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 पकड़ो, हाय हाय क्या हुआ क्या हुआ, अरे तुम क्या कर रहे, अरे तुम क्या कर रहे थे, अरे तुम तो बेवकूफ हो, अरे एक दूसरे को कोसने लगे कि अरे देखो देखो, जैसे सिंहों के बीच में से कोई सियार अपना शिकार ले जा रहा है वैसा ले जा रहा है, ये यज्ञ कुंड से कौवा आकर हविष लेके जाएगा, अलग अलग प्रकार से उपमान दे रहे थे वो। हालांकि शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि उल्टा हो रहा है, शेर सियारों के बीच में से अपनी शिकार ले जा रहा है। ऐसा होता है कभी कभी कि कोई प्राणी है, हिरण है, ऐसा है, और चारों तरफ से उसको सियार लोगों ने घूम कर घिर कर रखा है, और लोग क्या करते हैं, मारने का किसी में हिम्मत तो है ही नहीं, दे आर नॉट सो पावरफुल, तो केवल हुई 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 करते रहते हैं ऊपर देखते हुए। तो ये सारे राजा क्षत्रिय का अपना नाम भी सिंह होता है ना, कोई सिंह शंकर सिंह बलवान सिंह, तो ये सब सिंह थे नाम के केवल, और केवल मुंह ऊपर करके हुई 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 कर रहे हैं, और उसके बीच में ये कृष्ण भगवान ने आकर उसको ले भी गए, और वहां पर शिशुपाल तो बोला पूरा उसका हतप्रभ हो गया, बोला अरे मैं तो लुट गया, अरे मैं तो मर गया, अरे मेरा तो पूरा हाल खराब हो गया, अरे मेरी पत्नी को ले गया, अरे ये इतना नीच। और उनकी फेवरेट गाली क्या थी भगवान के लिए, एक ग्वाल बाल, ओह एक काउहर्ड, एक गाय पालने वाला। रीड भागवतम बिटवीन द लाइंस प्रॉपरली, यू विल फाइंड दैट फेवरेट अब्यूज वर्ड उनका ही है, हम किंग्स, वी आर किंग्स, हम राजा लोग हैं, ये काउहर्ड, ओह दूध बेचना दही बेचना ये धंधा करने वाला व्यक्ति, और वो हमारी कन्या को ले गया, क्या उसका धृष्टि। तो शाल्व ने कहा ए, अभी सब लोग शांत रहो, प्रिपेयर फॉर वॉरफेयर, चलो हम युद्ध करते हैं। सबने कहा हाँ युद्ध करते हैं। फिर किसने कहा अरे लेकिन वहां पर बलराम जी हैं और यादव सेना है, और युद्ध हम किसके लिए कर रहे हैं? तो सबने सोचा अभी तो क्या वो तो मिलने वाले है ही नहीं, तो इस शिशुपाल के लिए क्यों अपना जान खतरे में डाले। तो एक एक करके सब लोग वापस चले गए। तो शिशुपाल को किसी ने कहा शिशुपाल दैव बड़ा बलवत्तर, प्रोविडेंस के सामने किसी का कुछ नहीं चलता, और प्रोविडेंस तो ईश्वर की सत्ता है। अरे वही ईश्वर ले गया तुम्हारे रुक्मिणी को, ये नहीं जानते वो। डीमंस नो वेरी वेल कि प्रोविडेंस कभी कभी इतना अच्छा उद्देश्य करते हैं उस असुर लोग भी कि काल है ना, काल के सामने किसी का नहीं चलता। अरे वो साक्षात काल आपके सामने कृष्ण के रूप में खड़े हैं। टाइम इज वन ऑफ हिज इनसिग्निफिकेंट एनर्जीज, काल क्या कर सकता है भगवान को। सो दिस इज मंडेन एजुकेशन, मंडेन एरुडिशन, स्कॉलरशिप तो बहुत है, इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कृष्णा, नो यूज, नो यूज, कंप्लीटली जीरो। हम कभी कभी सोचते हैं कि ये असुर लोगों को ज्यादा बुद्धि नहीं होती ना, थोड़े बेवकूफ होते हैं ना, बड़े बुद्धिमान होते हैं मटेरियल सेंस में। अब ये तो शिशुपाल को समझा रहे हैं कि प्रोविडेंस है और ऐसा है वैसा है, भूल जाओ सब ठीक हो जाएगा। वो कह रहे ठीक हो जाएगा, आपके लिए क्या है, इधर में इतना आया था और अभी। और रुक्मी उसकी बुद्धि तो और फिर गई, बोले आज ही मैं इस ग्वाल के बच्चे को उसकी हैसियत क्या बताऊंगा, आई एम गोइंग अलोन। लोगों ने कहा अरे अरे रुको जरा सेना लेकर जाओ, अरे सेना में ना सब भूल जाओ। मतलब उस पैशन में आके आदमी कॉमन सेंस भी खो देता है। एक कृष्ण के साथ तुम लुट, सुदेव समझते कि जैसे कोई नेट पतंगा होता है ना, वो पतंगा सोचे मैं सूरज को खत्म कर रहा हूं अभी, वो सूरज क्या, सूरज के लाखों किलोमीटर पहले ही तुम जल जाओगे। तो इस तरह से रुक्मी जाकर फिर वो उनका युद्ध बताया, भगवान तीन तीर छोड़ते हैं और उसके चैरिटियर, उसके घोड़े, उसका फ्लैग सब कुछ नष्ट करते हैं। और बाद में ऐसा होता है कि रुक्मी को उठा रहा है तो गिर गया, ये उठाया गिर गया, तलवार उठाई टूट गई, भाला उठाया टूट गया। वो बोला अभी तो कुछ बचा ही नहीं। फिर एक तलवार होती है नीचे, तो उस तलवार को उठाकर वो रथ के नीचे उतर आता है। भगवान कृष्ण भी एटिकेट संभाल कर अपने रथ से नीचे उतर आते हैं, वो भी एक तलवार उठाते हैं। जैसे शत्रु पक्ष के पास है वैसा ही आयुध लेना, और वो उसको पकड़कर उसकी गर्दन काटने ही वाले हैं कि रुक्मिणी कहती कि प्लीज मेरे भाई को बचाइए। इस प्रसंग को लेकर बलराम जी एग्जैक्टली वही शब्दों में नहीं, लेकिन जो अर्जुन की मोहमाया इल्यूजरी कंडीशन को भगवान ने गीता सुनकर बताया, उसको बचाया था, वैसा ही उपदेश बलराम जी करते हैं रुक्मिणी देवी को कि वाई आर यू सो अटैच्ड, इसके लिए बाकी लाखों लोग मर गए उसका क्या है, उनके लिए आपके प्रति मन में करुणा नहीं है, इसके प्रति क्यों, वाई दिस बॉडीली अटैचमेंट। तो खैर वो तो हमारे टॉपिक से बाहर है, लेकिन बहुत सुंदर उपदेश है वो। तो कृष्ण भगवान को कहकर बलराम जी कहते हैं कि हे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको मारो मत। ओके ठीक है, नहीं मारते। तो क्या करते हैं वो, उसी तलवार से थोड़ी आधी दाढ़ी काटते हैं, आधी मुस्ताच काटते हैं, इधर कुछ कट 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 करके थोड़ा सा, तो ही लुक्स मोर हॉरिबल देन बिफोर, वो पूरा विद्रूप हो जाता है। और उसने क्या कहा था, जब तक मैं कृष्ण की लाश नहीं लाऊंगा मैं अपने एक नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। अभी हो गए मुसीबत, मैं तो अंदर भी नहीं आ सकता, तो वो उधर ही रहता है। अभी बलराम जी के उपदेश से, कृष्ण भगवान के मैग्नानिमिटी से उसकी जान तो बची ना, तो रुक्मिणी वॉज कन्विंस्ड बलराम जी के उपदेश से, शी इज वेरी हैप्पी, बहुत सुखी होती है। और रुक्मिणी के मन में क्या होता है, अरे इसने तो मुझे बहुत ही विरूप कर दिया, कुरूप कर दिया, वॉट एवर यू आर अटैच टू दैट विल बी द कलर ऑफ योर कॉन्शियसनेस। अभी सामने भगवान कृष्ण बलराम इकट्ठा देखे हैं, उनकी कृपा मिली है, भगवान ने उसकी जान भी बचाई है, लेकिन मन में क्या था, ये इसने मुझे विरूप कर दिया। आगे भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे कि भगवान बलराम जी ने खुद उसको बचाया था ना उतने सालों पहले, फिर एक गैम्बलिंग मैच में वही रुक्मिणी भगवान को थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करता है, तो तब भगवान बलराम डजंट टॉलरेट, गदा उठाकर एंड ऑफ रुक्मिणी। तो कई लोग होते हैं जो या तो उपदेश से भी नहीं समझते या और किसी चीज से नहीं समझते, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर अटैचमेंट टू वन पर्टिकुलर फ्रेंडशिप विद द विकेंड। भागवत में बार बार ये श्री आता है, फ्रेंडशिप विद द विकेंड, विषयीर अन्न खाइल दुष्ट होय मन, विषयी लोगों का अगर अन्न भी खाएंगे तो मन दुष्ट होता है, उनका संग करेंगे तो हम भी दुष्ट हो जाते हैं। तो एनीवे ये एक सक्सिंट इंफॉर्मेशन थी कि किस प्रकार से भगवान आत्माराम आत्मसंतुष्ट होकर भी केवल अपने भक्तों का प्रिय करने के लिए, भक्तों को संतुष्ट करने के लिए लीला करते हैं। तो विल स्टॉप हियर, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा गोपीनाथ की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। थोड़ा लेट हो गया है, विल नॉट टेक एनी क्वेश्चंस।